जन बलभ जय गिरिवर जे गोपी जन बलभ जय गिरिवर यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मध्यस्थ डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुमंद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पीछे सब लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, एक ऐसी लीला है जो श्रीमती राधा रानी के विषय में शायद आपने नहीं सुनी। ये लीला श्रीमती राधा रानी के बारे में है जो शायद आपने नहीं सुनी, और अगर सुनी है तो इतनी दिव्य है कि जितने बार सुने उतना ही इसमें रस है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, सब लोग सुने ही ध्यान से। ये लीला उस समय की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में है। भगवान कृष्ण द्वारका में है और राधा रानी ब्रज में है, ब्रज में कदली वन में निवास करती हैं, और कृष्ण जब से गए मथुरा तब से 100 साल पूरे हो गए हैं। कितना? 100 साल पूरे हो गए हैं। राधा रानी को श्राप मिला था कि कृष्ण का उन्हें 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा, तो वो वियोग जो है उनका 100 साल का पूरा हो गया है। और अब कृष्ण के साथ अब उनका मिलन होना है, लेकिन वो जो व्यवस्था है, जो घटना है, वो तो भगवान ही बनाएंगे। ऐसी घटना का योग तो भगवान ही बनाएंगे कि अब कैसे मिलन होगा, है ना? क्योंकि वैसे मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि वे द्वारका नहीं आ सकती हैं और कृष्ण द्वारका से वृंदावन नहीं आ सकते हैं। लेकिन घटना का किस प्रकार से ये योग बनता है इसको हमें समझना है। श्रीमती राधा रानी सत चंद्रानना के मुख से शास्त्रों की बातें सुनती हैं। चंद्रानना के मुख से सिद्धाश्रम की महिमा सुनी। सिद्धाश्रम एक स्थान है द्वारका में, एक कुंड है जिसके स्नान का बड़ा महात्म्य है। और ये कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलाश को, और बताते हैं कि ये सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनिए, जिसे सुनकर प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सिद्धाश्रमस्य महात्म्यम सुनु राजन महामते, यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापे प्रमोचते। तो चंद्रानना के मुख से सिद्धाश्रम की महिमा सुनकर राधा ने उसमें स्नान करने का विचार किया। राधा रानी क्या विचार कर रही हैं कि द्वारका जाएं, सिद्धाश्रम में स्नान करें तो कृष्ण का मिलन होगा। लेकिन द्वारका जा रही हैं सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए, ये नहीं सोचते कि द्वारका जाएं तो पहले कृष्ण से मिलें। कृष्ण से मिलने का कोई मतलब कारण नहीं बन रहा है, कृष्ण से मिलने का कारण नहीं बन रहा है, लेकिन द्वारका जाने का एक कारण बन गया कि सिद्धाश्रम में स्नान करना है ना। तो राधा रानी ने सिद्धाश्रम में जाने का विचार किया, स्नान करने का विचार किया। तत्तीर्थस्यापि महात्म्यम श्रुत्वा चंद्रानना मुखान राधा स्नातुं मनश्चक्रे कृष्ण विक्षेपे विह्वलाम। उन्होंने चैत्र के समय सिद्धाश्रम की यात्रा करने के लिए कदली वन से निकलकर वहां जाने का निश्चय किया। गोपियों के 100 यूथ उनके साथ में जा रहे हैं, गोपियों के 100 यूथ उनके साथ जा रहे हैं। एक यूथ बताया गया है कि 100 करोड़ का होता है, एक यूथ 100 करोड़ का होता है, और गोपियों के 100 यूथ हैं। राधा रानी के साथ में है। देखो मिथिलापुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं, कौशलपुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं, जलंधरपुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं, सुतलपुर सुतल लोक वासिनी गोपियाँ अलग हैं, ऊर्ध वैकुंठ वासिनी गोपियाँ अलग हैं। कितने प्रकार की गोपियाँ हैं, 100 यूथ हैं गोपियों के, और एक यूथ में 100 करोड़ होता है। ये सब गोपियों के 100 यूथ राधा रानी के साथ चल रहे हैं, और गोप भी चल रहे हैं उनकी रक्षा के लिए। पुरुषों की भी तो आवश्यकता है रक्षा के लिए, तो गोप भी चल रहे हैं रक्षा के लिए। हाँ, और राधा रानी पालकी में बैठकर सिद्धाश्रम में आई, रास्ते में उनके ऊपर बराबर चमर डुलाए जा रहे हैं राधा रानी को। श्री राधा से भिकार उड़ा छत्र चामर विजिताम आनर्देशु महातीर्थम हे सिद्धाश्रमम सती। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, वहां ही यादवों से सुशोभित भगवान कृष्ण भी यात्रा के लिए अपने 16,000 स्त्रियों के साथ आए। देखो कैसा घटना का योग बना है, मतलब राधा कृष्ण का कोई मिलन का कोई मतलब वो नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन मिलन कैसे हो रहा है कि कृष्ण अभी 16,000 रानियों के साथ वहाँ पर आए हैं उस स्थान में, और राधा रानी वृंदावन से आई हैं द्वारका में सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए। करोड़ों बलवान गोप राधा की आज्ञा से चारों ओर सिद्धाश्रम की रक्षा करने लगे। राधा रानी ने अधिकार कर लिया से उस क्षेत्र में, और सब गोप जो है करोड़ों की संख्या में आगे तैनात हो गए कि कोई नहीं आ सकता यहाँ। और गोपियां भी जो है बैत हाथ में बैत लेकर के स्नान करती हुई राधिका की रक्षा करने लगी। गोपियां भी बैत लिए हुए हैं कि कोई नहीं आएगा, अभी राधा रानी स्नान कर रही हैं यहाँ। स्नान के लिए आए हुए द्वारका वासियों पर गोपों और गोपियों के बैतों की मार पड़ रही थी। हरिबोल, उन्हीं के स्थान में उन्हीं को ही मार पड़ रही है, यादवों को मार पड़ रही है। कभी नहीं आ सकते, अभी VIP स्नान कर रहा है कोई, कोई VIP लेडी स्नान कर रही है, अभी नहीं आ सकते। तो यादवों के ऊपर बैतों की मार पड़ रही है। उन्हीं के बीच भगवान कृष्ण की स्त्रियां भी थीं। उन स्त्रियों ने भगवान से पूछा, भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। तो भगवान की पत्नियों ने पूछा भगवान से कि अद्भुत वैभवशाली शालिनी ये कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसके गौरव से सब यादव त्रस्त हो रहे हैं। केयम स्नानीति पप्रच्छुर यस्यां वैभवमद्भुतम् यद् गौरवात् त्रसंती है सर्वे यादव पुंगवा। अहो, ये स्त्री किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी आप पूछ रही हैं भगवान से कि ये स्त्री किसकी पत्नी है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ रहती है? हे देव की नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, इसके विषय में बताइए, कौन स्त्री है, किसकी पत्नी है, कहाँ से आई है? अहोकस्य प्रिया चेयम् का नाम है कुत्र वासिनी तुम सर्वज्ञो हि भगवान वदनो देव की सुतम। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रियो, ये वृषभानु गोप की पुत्री कीर्तिदा नंदिनी और मेरी प्रिया साक्षात राधा है। हरिवोर, ये ब्रज मंडल की अधीश्वरी और सब गोपियों में श्रेष्ठ है। ब्रजभानुसुता साक्षात राधेयम कीर्ति नंदिनी ब्रजेश्वरी मंदयिता गोपिकाधीश्वरी वराम। ये देवी सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए ब्रज से यहाँ आई हैं, इनकी गरिमा से मेरे सभी यादव डरे हुए खड़े हैं। भगवान कहते, राधा रानी का ऐसा ही महात्म्य है, वो आई है स्नान करने के लिए, तो कोई अब स्नान नहीं कर सकता है। श्री राधा का ऐसा अद्भुत महात्म्य है। स्नातुम सिद्धाश्रमम प्राप्ता ब्रजान गोपी गणेश यद गौरवात्र संत्येते तस्या वैभवम अद्भुतम। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अपनी सौतों में सर्वाधिक रूप यौवन से गर्विता पत्नी सत्यभामा ने धीरे से कहा, क्या यूनियन बनाया? किसने? सत्यभामा ने। द्वारका की पत्निया का अलग यूनियन राधा रानी के विरुद्ध। सत्यभामा ने धीरे धीरे कहा, हा क्या क्या केवल राधा ही रूपवती है? सत्यभामा बोली, क्या केवल राधा ही रूपवती है? मैं नहीं हूं, मेरे रूप गुणों पर मुग्ध होकर बहुत से राजा मेरी याचना करने आए थे। हे सखियो, मेरे रूप के कारण सद्धर्मा मारा गया और अक्रूर और कृतवर्मा को भी भागना पड़ा। जो प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करता है वो सिमंतक मणि मेरे पिताजी ने इनको दिया है और मेरे सामने राधा रानी की प्रशंसा कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है, तुम सब लोग समझ रहे हो? हाँ, मेरे सामने राधा रानी की प्रशंसा कर रहे हैं जबकि मेरे पिताजी ने इनको सिमंतक मणि दिए, 8 भार सोना रोज पैदा करती है, दहेज में इतना मिला, और जिसके कारण दुर्भिक्ष नहीं होता, महामारी नहीं होती, सर्प रोग की बाधा नहीं होती है, जहाँ सिमंतक मणि की पूजा होती है वहाँ कोई शुभ नहीं होता, माया नहीं चलती है। वो मणि मेरे पिता ने दहेज में दी है और मेरे सामने राधा का गुणगान हो रहा है, ये कितना अन्याय हो रहा है, है? तुम सब लोग देख रही हो, समझ रही हो? और उसी से मेरे घर में सब वैभव है सिमंतक मणि के कारण। उसी के कारण मैं बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पर चढ़कर चलती हूँ। अरे वो सिमंतक मणि के कारण श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पर चढ़कर के चलती हूँ। प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर का विकट युद्ध तो मैंने देखा। भौमासुर को जब मारने गए तो मुझे गरुड़ में बैठा करके अपने साथ ले गए थे और मैं पीछे बैठे बैठे इनका युद्ध देखती रही। इन्होंने भौमासुर को मारा है और मेरी कृपा से ही तुम सब यहाँ आई हो। भौमासुर की यहाँ तुम लोग कैद पड़ी थी तो मेरी कृपा से आई, मेरे से अनुमति ली, इन्होंने आज्ञा ली, तब तुम्हारे साथ विवाह किया है। इसलिए तुम सब लोग किसके पक्ष में रहोगी, राधा रानी के पक्ष में या मेरे पक्ष में? मेरी अनुमति से कृष्ण ने तुम्हारे साथ विवाह किया है, इसलिए किसके पक्ष में रहोगी? मेरे पक्ष में, राधा रानी के पक्ष में नहीं रहोगी। यहाँ आकर मेरी बराबरी करते हुए तुम भगवान कृष्ण की पत्नी बनी हो और मेरे गौरव से भगवान ने इंद्र को छत्र प्रदान किया, जो छत्र छीन लिया था, तो मेरी आज्ञा से जो है फिर कृष्ण मुझे लेके स्वर्ग गए, इंद्र को छत्र भी दिया और मेरे कल्याण के लिए इंद्र की माता अदिति को कुंडल भी दिए, आशीर्वाद पाने के लिए, मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए अदिति माता को कुंडल भी दिए जो भौमासुर ने छीन लिए थे। ऐरावत कुल के हाथी और भौमासुर की सब संपत्ति श्री कृष्ण मेरी इच्छा से द्वारका में लाए हैं। इसलिए किसके पक्ष में रहोगी तुम लोग? मेरे पक्ष में रहोगे। मेरे कारण श्री कृष्ण इंद्र के साथ महान बैर किया। जब पारिजात मैंने पसंद किया, ये चाहिए पसंद, और इंद्र ने कहा नहीं ये नहीं मिलेगा, तो कृष्ण ने सब देवताओं से युद्ध करके वो पारिजात भी लिया, तो मेरे कारण तो इतना बड़ा युद्ध हुआ है। मेरे कारण मेरे द्वार पर वो पारिजात सदा विराजमान रहता है और मैंने अपने पतिव्रत से श्री कृष्ण को वश में भी किया। मैंने सब उपाय के साथ श्री कृष्ण का दान करके नारद जी को दिया था, नारद जी को अपना पति दान दिया तो मैंने किया। सो मेरे समान ना किसी का वैभव और ना गौरव, मेरे जैसा ना किसी का रूप है और ना उदारता है, तो मेरे सामने राधा की चर्चा बेकार। सत्यभामा ने सब कृष्ण की पत्नियों को बताया। अच्छा, जिसके रूप पर ऋषिकर शिशुपाल आदि राजा लड़ पड़े। सो हे रुक्मिणी, क्या तुम रूपवती नहीं हो? रुक्मिणी है तो रुक्मिणी का हाँ रंग चढ़ गया। हाँ रुक्मिणी को, रुक्मिणी को भी चढ़ा दिया रंग है। हे सखियो, राधा एक ग्वाले की पुत्री है। किसकी पुत्री है? ग्वाले की पुत्री है, और तुम सब राजाओं की पुत्रियां हो। तुम धन्या हो, मान्या हो, और मानवती नारियों में श्रेष्ठ हो। सत्यभामा के कहने पर रुक्मिणी आदि सभी कृष्ण पत्नियां मान करके बैठ गईं। सब मान करके बैठ गईं हैं कि हमारे सामने किसकी चर्चा कर दी? राधा की चर्चा कर दी। तो कुल कौशल शील रूप यौवन से गर्वित होकर श्री कृष्ण की आठ पटरानियां भगवान से बोली। अब आठ बोली भगवान से, क्या बोली? भगवान, पूर्व काल में हमने आपके मुख से राधा के रूप की बड़ी चर्चा सुनी। आप नित्य उनके रंग में रंगे रहते थे, वे आपके रंग में रंगी रहती थीं। आपके उस प्रेसी ब्रज बाला को हम देखना चाहती हैं। शिष्टाचार के अनुसार बोला कि हम देखना चाहती हैं उनका कितना रूप है, लेकिन वास्तव में इरादा यह है कि हम दिखाना चाहती हैं कि राधा का रूप हमारे जैसा नहीं हो सकता, लेकिन शिष्टाचार के नाते हम देखना चाहती हैं। आप बहुत वर्णन करते थे, लेकिन जब आप देखोगे हमारे सामने राधा को, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राधा में और हम में क्या अंतर है ना। तो इस तरह से उन्होंने गर्वपूर्वक ये कहा कि हम राधा का दर्शन करना चाहती हैं। आपके वियोग में वे सदा खिन्न रहती हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। ताम राधाम द्रष्टुम इच्छामस तत्प्रियाम ब्रजवासिनीम तद्वियोगेन संखिन्नाम स्नातुम चात्र समागताम। नारद जी बोले, हे राजन, पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनकर तथास्तु कहा। तथास्तु मतलब ठीक है, किसने कहा तथास्तु? ठीक है ना। तो पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि कृष्ण की पत्नियों के सामने राधा रानी आएंगी। तो कृष्ण राधा रानी के रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन राधा रानी उनके सामने तो नहीं है। सोलह हजार स्त्रियों के साथ राधा को देखने के लिए गए। कौन कौन गए राधा को देखने के लिए? कौन गए? भगवान कृष्ण। तथास्तु चोक्त्वा श्री कृष्णा पटस्त्री परिवेष्टिता षोडश स्त्री सहस्राढ्यो द्रष्टुम राधाम जगामः। सुंदर शिविर में ध्वजा पताकाओं से शोभित चंद्रमंडल सदृश चंदोमे तने हुए थे। मोतियों के पर्दे लगे थे, सफेद बिछौने बिछे थे, वहां चारों ओर चमेली के इत्र की सुगंध उड़ रही थी। उस सुगंध से आकृष्ट भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जिसका मन श्री कृष्ण ने हर लिया था, वो राधा विराजमान थी। तेन श्रृंगावली चक्र कलम कोलाहलम परम तत्र राधा पटरागी श्री कृष्ण हृदय मानसा। उस समय सखियां चमन डुला रही थीं, उनके ऊपर छत्र लगा हुआ था, दासियां इधर उधर दौड़ रही थीं। उस समय राधा बिजली जैसे चमकीले कुंडल पहने थीं, करोड़ों चंद्रमाओं जैसी उनकी कांति थी और बहुत कोमल शरीर था। पैरों की अंगुलियों के अग्रभाग से वे फूल बिखरी भूमि पर धीरे धीरे टहल रही थीं। दूर ही से राधिका को देखकर श्री कृष्ण की हजारों रानियां उनके रूप पर मोहित होकर बेहोश हो गई। हरि बोल। दूराताम राधिकाम प्रेक्ष कृष्ण पत्न्या सहस्रशः जगमुर्मूर्छाम महाराज तद्रूपेण अति मोहिता। राधा के तेज से श्री कृष्ण की रानियों की कांति वैसे ही मंद पड़ गई जैसे सूर्योदय के सामने तारा तारागण फीके पड़ जाते हैं, सूर्योदय हो तो तारों की कांति फीके पड़ जाए। उस समय सारा रूप अभिमान लुप्त हो गया और परस्पर कहने लगी। तत्तेजसा हतेरुचा सूर्या तारा गणायथा रूपाभिमानास्ता ऊचो सर्वा परस्परम। अहो ऐसा अद्भुत रूप तीनों लोकों में नहीं देखा गया, हमने जैसा सुना था वैसा ही अद्वितीय रूप देखा है। ऐसा कहती हुई वे श्री कृष्ण के सामने आई, तब गोपियों और रानियों की आंखों से आंखें मिली। एवं वदन्त्यस्ताम् प्राप्ता श्री कृष्णस्य पुरासरा गोपीनाम राजपुत्रीनाम नेत्राणि परिरेभिरे। तो नारद जी कहते हैं हे राजन, सभी पटरानियों के साथ श्री कृष्ण को आया देखकर सब गोपिकाएं हर्षित होकर जय जयकार करने लगीं। तब राधा सहसा उठ खड़ी हुई, उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की परिक्रमा की और कमल जैसे नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। 100 साल के बाद दर्शन हुआ है राधा रानी को, जिसमें सिमंतक मणि का पाया है। सिमंतक मणि का पाया राधा रानी का जो सिंहासन है, वो उसका जो उसके जो पाए हैं वो सिमंतक मणि के बने हैं। सत्यभामा कह रही एक सिमंतक मणि हमारे पिताजी ने दी है। राधा रानी के सिंहासन के जो पाया है वो सिमंतक मणि से बने हैं। सोचिए, चंद्रमंडल के समान मंडकल मंडलाकार गोलाई थी जिसकी किनारी कौस्तुभ मणि की थी। कौस्तुभ मणि जो भगवान के वक्षस्थल में होती है, वैकुंठ में, उनकी पहचान होती है एक कौस्तुभ मणि के द्वारा। केवल एक कौस्तुभ मणि के द्वारा भगवान की पहचान होती है और किसी के पास कौस्तुभ मणि नहीं वैकुंठ में। वो कौस्तुभ मणि राधा रानी के सिंहासन के चारों तरफ किनारी किनारी है। अरे हो, कौस्तुभ मणि की किनारी है और जिस पर पारिजात के फूल बिछे हैं, अमृत का झरना बहाने वाला छत्र जिस पर लगा हुआ है, ऐसे दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया राधा रानी ने। हरि बोल। और हंसते हुए मुख से राधा बोली, आपके आगमन से आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी तपस्या भी सफल हुई, इस सिद्धाश्रम का स्नान भी सफल हो गया। सिद्धाश्रम का स्नान का ये महात्म है कि कृष्ण का मिलन होता है, तो ये अद्भुत स्नान का फल मिला मुझे। भक्तों के सहायक आपकी मैंने भक्ति नहीं की, तथापि मेरी सहायता के लिए आपने बहुत तेरे असुर मार डाले। सत्यभामा कह रहे हैं कि मेरे लिए इन्होंने ये किया वो किया, तो राधा रानी क्या कह रही हैं, मैंने तो आपकी कोई भक्ति नहीं की, है ना। सत्यभामा तो अपना गुण बताते हैं कि मेरे गुण इतने इतने हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए ये काम किए। राधा रानी अपना गुण नहीं बता रही हैं, अब मेरा कोई गुण नहीं है, तो भी आपने मेरे लिए बहुत से असुर मारे। तीनों लोगों को जीतने वाला कंस भी आपसे भयभीत हो गया। हे देव, आपने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे लिए वृक्ष की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। सक्रस्य मान भंगोपि कृतो देव तो या बलात् मत कारणात् ब्रजम रक्षन् धृत्वा गोवर्धनाचलम्। रास के समय इच्छानुसार आलिंगन करके गोपियों ने आपको अपने बस में किया, आपका ये चरित्र अद्भुत है। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा कहते हुए राधा चंद्रानना गोपी की आज्ञा से श्री कृष्ण की पत्नियों से बड़े आदर पूर्वक मिली और उन्हें गौरव प्रदान किया। राधा रानी ने सम्मान किया, कृष्ण की पत्नियों का सम्मान किया। कृष्ण की पत्नियाँ रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, नागनजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रविंदा से भी राधा मिली। राधिका 16,000 रानियों से भी गले लगकर मिली। 16,000 100 अलग हैं और 8 अलग हैं, तो उनसे भी गले लगकर मिली। राधा ने कहा, जैसे चंद्रमा एक है और चकोर बहुत हैं, उसी प्रकार हम बहुतेरी बहनें हैं और भगवान श्री कृष्ण एक हैं। राधा रानी कहती हैं, सूर्य एक है, नेत्र बहुत से हैं, उसी प्रकार हम बहुत तेरी बहन हैं और भगवान कृष्ण एक हैं। जैसे कमल का प्रभाव भ्रमर जानता है, कमल का प्रभाव भ्रमर जानता है, रत्न का प्रभाव जौहरी जानता है, विद्या का प्रभाव विद्वान जानता है और कविता का प्रभाव कवि जानता है, रस का प्रभाव रसिक जानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रभाव को इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण का भक्त ही जानता है। चंद्र यथ को बहवत चकोरा, सूर्यो यथ को बहवा दृशा स्यो, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथ को भक्ता भगिन्यो भवो वयम च। पद्म प्रभावम मधुपो यथा ही, रत्न प्रभावम किल तत्परीक्षेन, विद्या प्रभावम च यथा ही विद्वान, काव्य प्रभावम च यथा कवींद्र। नारद जी बोले, हे राजन, राधा की बात सुनकर सब स्रोतों के साथ रुक्मिणी राधिका से बोली, रुक्मिणी जी राधा से बोली। रुक्मिणी ने कहा, हे राधे, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे वशीभूत हो गए हैं। सारी त्रिलोकी जिनकी कथा कहती है, वे श्री कृष्ण भगवान रात दिन तुम्हारी ही कथा कहते रहते हैं। हरि बोल। किसने कहा? रुक्मिणी ने राधा रानी से कहा। तीनों लोग जिनकी कथा कहते हैं वही कथा तुम्हारी बोलते हैं, वही कृष्ण तुम्हारी कथा बोलते हैं और रात दिन बोलते हैं। श्री हरि के प्रति जैसे तुम्हारे भक्ति भाव का लक्षण सुना था, वैसा ही मैंने देखा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप हमारे शिविर को चलिए, जहाँ से हम अब बड़े आदर पूर्वक आपको लेने आई हैं। रुक्मिणी ने कहा, राधा रानी से क्या कहा, हमारे शिविर में आप आइए, अतिथि अतिथि के रूप में आइए। ऐसा कहकर रुक्मिणी राधा को बड़े आदर के साथ अपने शिविर में ले आई। उस शिविर का नाम सर्वतोभद्र था। सुनहले पलंग पर शीर्ष के फूल की कोमल गद्दी और तकिया थी। वहां बैठा कर रुक्मिणी ने फूल माला चंदन वस्त्र और आभूषण से सत्कार करके राधा को वहीं रात्रि वास कराया, पूरी रात निवास कराया। राधा के साथ जो गोपियों के सौयूथ थे, रुक्मिणी ने एक एक करके सबका सत्कार किया और उनसे बहुत तरह की बातें की। इसके बाद राधा को वहां सुलाकर रुक्मिणी आदि पटरानियां अपने अपने शिविर को चली गईं। जब रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास गई तो देखा कि भगवान अभी जाग रहे हैं। तब रुक्मिणी ने कहा, हे स्वामी, अब तक आप सोए क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुमने राधा का स्वागत वार्तालाप और आश्वासन से भरपूर सत्कार किया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुई। वे सोने से पहले नित्य दूध पीती हैं, किंतु आज उन्होंने दूध नहीं पिया, इससे उनको नींद नहीं आई, इसी कारण मेरे नेत्रों में भी नींद नहीं आई। अरे वो साच नित्यम ही पिबति सैना दो पया शुभम पया पानम दुनाकृतम अद्य शुभ्रोतया किल तेन निद्रा नयन और न जाता अस्या महामते तस्मान ममापि प्रस्वापो न जातो भीष्म कन्यके। नारद जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण के वचन सुनकर सपत्नियों के साथ रुक्मिणी आदर पूर्वक दूध लेकर राधा के पास गई। सोने के कटोरे में मिस्त्री घोल कर गरम दूध ले जाकर रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से राधा को पिलाया। इस प्रकार भली भांति सत्कार करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि सौतों के साथ भगवान के पास लौट आई। यहाँ आकर अपना किया हुआ सारा कार्य सुनाकर उनके पैर दबाने लगी। सुना दिया कि हमने राधा को दूध पिला करके सुला दिया है, और भगवान के पैर दबाने लगी। जब महारानी रुक्मिणी अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण दबा रही थी, तो सहसा उनके पैरों में छाले पड़े देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। वे बोली, हे प्रभु, आपके पैरों में छाले क्यों पड़ गए? आज ही पड़े हैं कि कल नहीं पड़े थे? आज ही पड़े हैं, और आज तो आप नंगे पैर चले भी नहीं कहीं, छाले कैसे पड़ गए? बहुत सोचकर भी मैं कारण नहीं जान सकी। जब कि 16,000 रानियां भी सुन रही थी, तब राधा की भक्ति दिखाने के लिए भगवान रुक्मिणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, राधिका के हृदय कमल में मेरा चरण कमल नित्य विराजमान रहता है। रात दिन स्नेह बंधन में बंधे रहने के कारण आधे क्षण के लिए भी वो वहां से नहीं हटता है। क्या, कहां से नहीं हटता है? मेरा चरण कमल राधा की हृदय कमल से आधे क्षण के लिए भी नहीं हटता है। क्यों? बंधा है स्नेह में। सो आज राधा के बहुत गर्म दूध पीने से मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं। तुमने भी उन्हें मंद गरम दूध ना देकर बहुत गरम दूध पिला दिया। श्री राधिकाया हृदय रविंदे पादा रविंदम ही विराजते मे अहर्निशं प्रस्रय पार्श्वबद्धं लवं लवार्धं न चलत्यतीव अद्योष्ण दुग्धे प्रतिपानतोऽङ्घ्रा वुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति मन्दोष्णवेवं हि न दत्तमस्य यस्माभिरुष्णं तुपया प्रदत्तम्। नारद जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण के वचन सुनकर रुक्मिणी आदि सुंदरियों ने प्रेम के साथ भगवान का चरण छोड़ दिया और बड़े आश्चर्य में पड़ गई। कितना आश्चर्य है, श्री राधिका का मधुसूदन में परम प्रेम है, उनके समान प्रेम सारे संसार में किसी भी नारी में नहीं है। श्री राधाया परा प्रीतिर माधवे मधुसूदने तत्समानान च कैसा अद्वितीया महीतले। नारद जी बोले, हे राजन, श्री राधिका और गोपियों का भगवान कृष्ण में परम उत्कृष्ट प्रीति देकर सब रानियों ने राधिका का रास देखने की इच्छा करके कहा। पटरानियां बोली, वे भक्त गोपियां धन्य हैं क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नित्य विद्यमान रहती है, इसी से सदा रास रंग में सराबोर रहती हैं। उनके तप का वर्णन कैसे किया जाए। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, आपके पास जो मोबाइल है उसको बंद कर दीजिए। क्या सुना? कृष्ण की पत्नियां कह रही हैं कि गोपियां धन्य हैं, उनके तप का वर्णन कैसे किया जाए। हे माधव, वृंदावन में आपने जिस प्रकार राज किया था उसे हम देखना चाहती हैं। द्वारका की रानियां हैं, सुना है कि आप राज करते थे वृंदावन में, तो हम देखना चाहते हैं। क्यों? राधा रानी हैं, गोपियां हैं, तो करो राज। हे प्रभु, यदि उचित समझे तो हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, क्योंकि इस समय आप भी यही हैं, राधा भी यही हैं, गोपियां भी यही हैं, इसलिए यहाँ रास होना उचित है। हे जगन्नाथ, आप हमारा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। रास क्रीड़ा के सेवा और हमारा कोई मनोरथ नहीं है। कौन कह रही हैं? रानियां कह रही हैं। उन रानियों के वचन सुनकर हंसते हुए भगवान उनको मोहित करते हुए बोले, हे सुंदरियो, रास की अधीश्वरी तो राधा है, अतएव रास तभी हो सकता है जब राधा की इच्छा हो। अच्छा हो, आप उन्हीं से पूछें। भगवान के वचन सुनकर रुक्मिणी आदि रानियां राधा के पास गईं, बड़े प्रेम के साथ हंसती हुई बोली। किसी को मनाना है तो हंसना पड़ता है ना प्रेम के साथ। उन्होंने कहा, हे रंभोरु चंद्र बदने, हे ब्रज सुंदरी, हे राजेश्वरी, हे सखी, हे शील रूपे, हे राधे, हे सुभांगे, हम सब आपसे कुछ पूछने आई हैं। यहाँ राशेश्वर श्री कृष्ण हैं, आप राशेश्वरी और गोपियाँ हैं, रस पाने के लिए उत्सुक हम लोग भी हैं, अतः हमारी यही इच्छा है कि यहाँ रास हो, क्योंकि रास हमें बहुत प्रिय है। रंभोरु चंद्र बदने ब्रज सुंदरी चे राशेश्वरी प्रियतमे सखिशील रूपे राधे सुकीर्ति कुल कीर्ति करे सुभांगे त्वां प्रष्टु मागतवती सकला वयस्म राशेश्वरोऽपि किल चात्र रस प्रदायी राशेश्वरी त्वमपि गोप वरांगनाश्च एवं वयस्म इति सर्वे विधौ रसार्थे रासम कुरु प्रियतमे न तथा प्रियम नः। राधिका बोली, राशेश्वर, संतों पर कृपालु, श्री कृष्ण यदि रास करना चाहें तो रासोत्सव हो सकता है, उनकी सेवा करके बड़ी भक्ति से पूजन करके उन्हें अपने बस में करिए। नारद जी बोले, राधा की बात सुनकर रानी उन्होंने श्री कृष्ण की स्वीकृति की बात बता दी कि कृष्ण तो पहले से ही तैयार हैं, आपकी स्वीकृति चाहते हैं। तथास्तु कहकर राधा प्रसन्न हुई। तो राधा रानी ने क्या कहा? तथास्तु। तदनुसार बैसाखी पूर्णिमा किस पवित्र सिद्धाश्रम में संध्या समय रास का आरंभ हुआ। राशेश्वरी राधा के साथ राशेश्वर रसिक श्री कृष्ण रास क्रीड़ा करने लगे तो उनकी वैसे शोभा हुई जैसे रति के साथ कामदेव की शोभा होती है। राशेश्वर से रासार्थे राशेश्वर्या समन्विता राज रासे रसिको यथा रत्या रतीश्वर। उस समय जितनी गोपियां और जितनी रुक्मिणी आदि पत्नियां थी अकेले भगवान श्री कृष्ण उतने ही रूप में परिणत हो गए जिससे दो दो नारियों के मध्य एक एक कृष्ण दिखाई देने लगे। यावती गोपिका सर्वा यावती राज कन्या तावन रूप धरो रे जे एका कृष्ण दयोर्दयो। मृदंग मजीरा और वीणा के शब्द कलकंठी सुंदरियों के स्वर मनोहर नूपुरों करधनियों के निनाद मुखरित हो उठे। कोटि कंदर्प जैसे सुंदर वनमाला पहने मकराकृत कुंडल धारण किए पीतांबर किरीट कंकण और बाजूबंद पहनकर भगवान ने अपना श्रृंगार किया था। कोटि कंदर्प लावण्या श्रृंगी कुंडल मंडिता पीतांबर धरो राजन किरीट कटकांगदः। राशेश्वरी राधा के साथ गाते हुए भगवान राशेश्वर बड़े ही शोभित हुए जैसे ताराओं के साथ चंद्रमा की शोभा होती है। इस प्रकार रासोत्सव की आनंदमय रात्रि एक क्षण भर के समान व्यतीत हो गई। एक क्षण होता है 4 मिनट का, तो पूरी रात कितनी छोटी हो गई, 4 मिनट की हो गई। 4 मिनट के जैसे पूरी रात बीत गई। उस रास मंडल को देखकर रुक्मिणी आदि स्त्रियां परम आनंद को प्राप्त हो गईं और आकांक्षा पूर्ण हो गई। श्री रास मंडलम दृष्ट्वा रुक्मिणी आद्या स्त्रियो वरा जगमुस्ता परमानंदम सर्वापूर्ण मनोरथा। रास के अंत में रुक्मिणी आदि सभी रानियां प्रेम परायण होकर परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम रासान्ते रुक्मिणी मुख्या प्राहु प्रेम परायणा। रानियों ने कहा, हे नाथ, इस मनोहर रास में आपके रूप का माधुर्य देखकर हमारा मन इस प्रकार आनंद विभोर हो गया जैसे मुनियों को ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। दृष्ट्वा तन्द्रूप माधुर्यम रास रंगे मनोहरे गतम मनोना स्वानंदम ब्रह्मानंदम यथा मुनि। ऐसा रास ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। हे माधव, इस रास में गोपियों के 100 यूत हैं। हम सखियों सहित 16,000 रानियां और करोड़ों सखियों के साथ 8 पट रानियां हैं। हे माधवेश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी ना हुआ होगा। क्या विचार है? ठीक है, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। क्यों? इसमें हम भी तो हैं और हमारी करोड़ों सखियां हैं और सब राधा रानी और सब गोपियां तो हैं ही हैं और हम लोग भी जुड़ गई, तो ऐसा रास तो वृंदावन में नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? क्या विचार है? नारद जी कहते, हे राजन, इस प्रकार रानियों की अभिमान भरी वाणी सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण बोले कि ये बात तो तुम्हें राधा से पूछनी चाहिए, अगर मैं बताऊंगा तो कहोगे पक्षपाती हैं। इसलिए किससे पूछो? राधा रानी से पूछो कि क्या कुछ विशेषता रही यहाँ की रास में। एवं कृताभिमाना नाम रागी नाम प्रहसन हरे प्राहेदम पृच्छताम राधाम भवते भी परस्परम। श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा आदि रानियां राधा से पूछने लगी। तब मनी मन हंसती हुई राधा बोली। राधा ने कहा, बहुतेरी स्त्रियों से भरपूर होने के कारण ये रास तो अच्छा ही रहा, किंतु वृंदावन वाले रास के समान ये नहीं हुआ। हरि बोल। वो वृंदावन यहाँ कहाँ जहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से आकुल और प्रेम के भार से झुकी लताएं झूमती रहती हैं, यहाँ नहीं है वो लताएं। वृंदावन की वो लताएं यहाँ नहीं है और मतवाले भौरे गुंजारते रहते हैं। कुचात्र वृंदारण्यम ही दिव्य द्रुमलता कुलम प्रेम भारानत व्रतम मधुमत मधु व्रतम। फूलों का भार वहन करती हंसों और कमलों से युक्त और रत्नों से भरी यमुना यहाँ कहाँ है। पुष्प भी वहां वहंती या यथोष्णि मुद्रिता शोभा हंस पद्म समाकीर्णा क्वचात्र यमुना नदी। फूलों के बोझ से लदी माधवी लताएं यहाँ कहाँ हैं और प्रेम पूर्ण गायन करने वाले वे पक्षी यहाँ कहाँ हैं। वे पक्षी जो प्रेम का गान करते हैं वो यहाँ पर कहाँ हैं। माधव व्यस्तुलता क्वात्र पुष्प भार नता परा को पक्षिणा प्रेम परा गायंती मधुर सुनम। जिसमें चंचल भ्रमर गुंजार करते हो ऐसे कुंजों और प्रेम पूर्ण निकुंजों से भरे मंदिर यहाँ कहाँ हैं। कमल रज को बहन करने वाली भय शीतल मंद वायु यहाँ कहाँ है। लोलाली पुंजा कुंजा क्वा निकुंजा दिव्य मंदिरा को वायु शीतलो मंदो वादि पद में रजो हरण। मनोहर और ऊंचे शिखरों और फल फूल से लदे वृक्षों और कंदराओं वाला गोवर्धन पर्वत यहाँ कहाँ है। देख कितनी कमियां हैं। श्रृंगेर मनोहर है रुचैर गिरिर गोवर्धनो चलहा सर्वत्र फल पुष्पाढ्यो दरे भी क्वा करी वे सहा। कालिंदी के पुलिन की चमकती रेती में बैत लिए बंसी बजाते मोर पंख बांधे और बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण का वो श्रृंगार यहाँ कहाँ है। हरि बोल। और घुंघराले अलकों वाले श्री कृष्ण का वो रूप यहाँ कहाँ है। कालिंदी पुलिने रम्मे वायुनान्वित सहकते बंसी वित्र धरो मल्ल परिबर है विराजिता। कुचात्र कृष्ण श्रृंगारो वनमाला विभूषिता श्यामानाम मलकानाम चा वक्राणाम गंधधारिणाम। भगवान कृष्ण के मनोहर गंड स्थल पर हिलते डुलते बिजली जैसे चमकते कुंडलों की शोभा यहाँ कहाँ है। पत्रावली की सुगंधि के लोभी भ्रमरों से आवृत श्री कृष्ण का प्रेम भरा दर्शन स्पर्श और हर्षण यहाँ कहाँ है। पत्रावली गंध लोभा भ्रमन भृंगावली युते तो प्रेमणा दर्शनम चैव स्पर्शनम हर्षणम तथा। कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से दिखे श्री कृष्ण के कटाक्ष का वो रस यहाँ कहाँ है। हाथों से पकड़कर खींचना और हाथ से हाथ छुड़ाने का दृश्य यहाँ कहाँ है। कामेशुते में कौन ऐसा नेत्र है क्वा पांग जो रसहा आकर्षणम को हस्ताभ्याम हस्तान हस्त विसर्जनम। निकुंजों में छुपना छुपे हुए को ढूंढना चीर हरण बैत और बंसी चुराने वाली लीला यहाँ कहाँ है। विलीनत्वम निकुंजेशो सम्मुखेन तु दर्शनम ग्रहणम क्वात्र चीराणाम हरणम वेणु वित्रयो। परस्पर प्रेम पूर्वक भुजाओं से खींचना और बार बार चंदन चर्चित भुजाओं के स्पर्श का आनंद यहाँ कहाँ है। को प्रेमणा चात्र बाहोभ्याम कर्षणम चा परस्परम पुनः पुनः स्तन ग्रहणम भुजे चंदन चर्चितम। जहाँ जहाँ की जो लीला है वह वहाँ ही शोभित होती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। हरि बोल। यत्र यत्र चया लीला तत्र तत्र शोभते यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र मे नामना सुखम। नारद जी बोले हे राजन राधा के वचन सुनकर पटरानियों ने अपने रास का मान त्याग दिया और वे विस्मित होकर और हर्षित हुई विस्मित हुई और हर्षित हुई। राधा वाक्यम तथा श्रुत्वा सर्वा पट्टे महास्त्रियः जहुर्मानम सुरासस्य विस्मिता हर्तिताशिता। राधा के ईश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार सिद्धाश्रम में राज करके राधा के साथ समस्त गोपियों और राज रानियों को साथ लेकर द्वारका में प्रविष्ट हुए। अब देखो सबको साथ लेकर के द्वारका में आए भगवान। वहाँ उन्होंने राधा के लिए बड़े सुंदर महलों का निर्माण कराया और निर्माण कराया है। 16108 महल तो अलग बने हैं और राधा रानी और गोपियों के महल और बनवाए और भगवान की महल ऐसे थोड़ी बनते। अभी रोहिणी का जो मंदिर है कितने दिन हो गए बनने, बन रहा है ऐसा थोड़ी है। कृष्ण का जो निर्माण कार्य जो है एक क्षण में होता है, एक क्षण में ना, फास्ट सर्विस, बहुत फास्ट सर्विस है। महल तैयार करा दिए राधा रानी के लिए और गोपियों के लिए। उन्हीं महलों में सुखपूर्वक ब्रज की गोपियों को टिकाया। नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मैंने आपको सिद्धाश्रम की कथा सुनाई। सभार्यो भगवान साक्षात द्वारकां प्रवेशः कारयामास राधाय मंदिराणि पराणि च हिमासयित्वा सुसुखं सर्वास्ताश्च ब्रजोकसः इत्थं सिद्धाश्रम कथा मया ते कथिता नृप। अब जिन्होंने सुनी कथा वो कथा सुनने का महात्म सुन लें। ये कथा सब पापों को हरने वाली है। हरि बोल। सर्व पाप हरा पुण्य सर्वे साम चैव मोक्षदां। तो बहुत सुंदर कथा मैंने सुनाई है, क्योंकि राधाष्टमी निकट आ रही है, तो बहुत सुंदर कथा है। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। अच्छा बताइए, राधा रानी जब कदली वन में है, कृष्ण के वियोग का कष्ट भोग रही हैं, तो राधा रानी का कृष्ण से मिलन का जो योग है ये कितने समय के बाद बना, कौन बताएगा? 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ये मिलन का जो है योग बना, है ना। लेकिन कृष्ण और राधा रानी का जो शरीर है वो वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। कृष्ण का जो शरीर है वो 15 साल और 9 महीना 7.5 दिन के बाद फिर आगे अवस्था नहीं बढ़ती, है ना। और राधा रानी का भी 14 साल और कुछ इसी तरह का है, तो उनकी अवस्था फिर आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। फिर मतलब समय आगे बढ़ता है लेकिन अवस्था उनकी वही रहती है। 100 साल के बाद भी अवस्था क्या है? वही है। और कृष्ण भी जो है जब गए वृंदावन को छोड़ करके, तो उसी अवस्था में सब ब्रजवासी उसी अवस्था में रहे। 100 साल के बाद भी जितने ब्रजवासी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहे, है ना। अच्छा अब जब सिद्धाश्रम में राधा रानी आई है और अधिकार राधा रानी का हो गया, तो फिर मतलब फिर कैसा, मतलब वो दृश्य कैसा बन गया, दृश्य कैसा हुआ, कौन बताएगा? राधा रानी स्नान कर रही हैं उस समय सिद्धाश्रम का दृश्य कैसा हो गया, कौन बताएगा? हाँ वीआईपी वाला दृश्य हो गया, और जो गोप लोग हैं वो बैतों से जो है मार रहे हैं किनको? उन्हीं द्वारका वासियों को ही मार रहे हैं, उनके स्थान में आकर के मार रहे हैं कि वीआईपी स्नान कर रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अभी स्नान करने की? राधा रानी की ऐसे, राधा रानी को तो जानती नहीं कृष्ण की पत्नियाँ, तो कृष्ण की पत्नियाँ पूछती कौन स्त्री स्नान कर रही है इतनी वीआईपी, किसकी स्त्री है जो स्नान कर रही है? तो भगवान ने बताया कि वो मेरी प्रिया है और उसका ऐसा ही गौरव है। तो फिर सत्यभामा ने फिर यूनियन बनाया, क्या बोली सत्यभामा, क्या बोली, कौन बताएगा? सत्यभामा ने राधा के विरुद्ध अपना यूनियन बनाया, क्या बोली? हम राजा, हम सब राजाओं की पुत्रियां और वो ग्वाले की पुत्री है, और हमारे पिता ने क्या दिया कृष्ण को? समंतक मणि दी, जिसके कारण हम जो है गरुड़ पर बैठ करके चलती है, या तो गरुड़ पर बैठ के चलती है, और मैंने भौमासुर का युद्ध देखा, और तुम लोगों ने भी जो है मेरी कृपा से ही मेरे समान बनी हो, इसलिए किसके पक्ष में रहोगी? मेरे पक्ष में रहोगी, है ना। और फिर कृष्ण से वे जो है मानवती होकर के बोली, क्या बोली? शिष्टाचार पूर्वक, शिष्टाचार फिर भी है, क्या बोली? आप तो राधा रानी का बहुत गुणगान करते हैं, है ना, लेकिन हमारे सामने तो राधा रानी नहीं आई ना, इसलिए हमें दिखाइए राधा रानी को। तो इरादा क्या था कि जब हमारे सामने राधा रानी आएंगे तो क्या होगा, कृष्ण को भी पता चल जाएगा कि हम ज्यादा सुंदर हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, हाँ सुना नहीं पड़ा। रास में किसी पुरुष को आज्ञा नहीं है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन राधा रानी की आज्ञा से, वो तो कृष्ण की पत्नियां हैं ना, और राधा रानी समान व्यवहार कर रही ना उनके साथ। तो अभी मैं तो कुछ दूसरी बात पूछ रहा था ना, मैं क्या बोल रहा था, तो फिर भगवान कृष्ण जो है उन रानियों को लेकर के राधा रानी के शिविर में आए, और जब राधा रानी को देखा तो क्या हुआ, सब मूर्छित हो गई। और फिर जो है जब होश में आई तो फिर प्रशंसा करने लगी, तीनों लोगों में कोई नहीं है राधा रानी के समान, कोई नहीं है। राधा रानी का वैभव कैसा है, कौस्तुभ मणि वैकुंठ में एक भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर होती है, उनकी पहचान होती है उस कौस्तुभ मणि के द्वारा, नहीं तो सब विष्णु के समान है कौस्तुभ मणि के कारण। वो कौस्तुभ मणि राधा रानी के लिए क्या है, किनारी, उनके सिंहासन की किनारी बनी है कौस्तुभ मणियों की, कितनी कौस्तुभ मणियां हैं उनके सिंहासन। और सिमंतक मणि जो एक मणि सत्यभामा के दहेज में मिली है, वो उस मणि के पाए बने हुए हैं, राधा रानी के पाए बने हुए हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर रुक्मिणी ने जो है तुरंत ही स्वीकार कर लिया राधा रानी की महिमा, रुक्मिणी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती, बस रुक्मिणी ने स्वीकार किया, बहुत प्रशंसा की। और फिर राधा रानी से क्या कहा कि एक रात के लिए क्या करो, हमारे शिविर में आओ, हमारे शिविर में आओ, और सब उनकी जो सखियाँ हैं गोपियाँ हैं उनको भी लाई, सबको सुलाया, भोजन कराया, और भगवान कृष्ण के पास आए। तो भगवान कृष्ण के पास आए तो बहुत रात हो गई थी, लेकिन क्या देखा, कृष्ण क्या कर रहे हैं, जागे हैं। तो बोली आप क्यों जागे हैं, तो क्या बोले भगवान, राधा जी ने दूध नहीं पिया है, सोते समय दूध नहीं पिया है, इसलिए वो नहीं सोई, तो मैं भी नहीं सो रहा हूँ। ओहो, दूध नहीं पिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कमी रह गई हमारी। रुक्मिणी ने बहुत सोने के कटोरे में मिश्री घोल करके दूध पिलाया राधा रानी को, ज्यादा गर्म दूध पिलाया, और फिर राधा रानी को सुला करके आ गई। जब आई और प्रेम से पैर दबाने लगी तो क्या देखा, कृष्ण के पैर में छाले पड़े हैं। ओह, आपके पैर में छाले, आप तो आज चले ही नहीं, नंगे पैर चले ही नहीं, आज आपके पैर में छाले कैसे, रोज हम आपके पैर दबाती हैं, तो कल तो नहीं थे, आज आप बिल्कुल नहीं चले, छाले कैसे हो गए। तो भगवान ने क्या बताया, राधा रानी के हृदय कमल में मेरा चरण कमल दिन रात बना रहता है, और बंधा है किससे, प्रेम के बंधन से, दिन रात एक क्षण के लिए भी वो उनके हृदय कमल से मेरा चरण कमल हटता नहीं है। और तुमने ज्यादा गर्म दूध पिलाया इसलिए मेरे प्यार में छाले पड़ गए, है ना। कितनी अद्भुत कथा है ना, बहुत सुंदर कथा है, ये कथा ऐसी नहीं है कि खाली सुन लिया और बस निकाल दिए दिमाग से, ऐसा नहीं है, बताना है ना, राधा रानी की महिमा। अच्छा हाँ, फिर इसके बाद फिर सब कृष्ण की पत्नियाँ फिर क्या चाहती हैं, कृष्ण की पत्नियाँ फिर क्या चाहती हैं, रास। हमने सुना है क्या वृंदावन रास करते हैं, है ना। तो यहाँ तो राधा रानी हैं और आपकी सब सखियाँ हैं, तो फिर यहाँ रास होना चाहिए, है ना। तो भगवान ने क्या कहा, हाँ राशेश्वरी वो हैं, राशेश्वरी के जो है अनुमति से ही रास हो सकता है, तो फिर सब गई। अब राधा रानी से बहुत प्रेम पूर्वक बड़े अच्छे अच्छे नाम लिए, किसी को प्रसन्न करना है तो फिर ना, बड़े अच्छे अच्छे नाम ना, हंस करके बातें करती हैं राधा रानी से, है ना, कि आप जो है रास करो,
कृष्ण जी।
तो राधा रानी ने क्या कहा? राशेश्वर तो वो है, तो जब बताया कि नहीं वो तो पहले से ही आपकी अनुमति चाहते हैं। तो राधा रानी ने तथास्तु कहा, है ना। रास बहुत सुंदर रास हुआ, और इस बार जो है भगवान ने रास में उनको भी शामिल किया। जो देखना चाहती थी वो नहीं सोचती थी कि हम भी रास में शामिल हो सकते हैं, अपने को योग्य नहीं समझती थी, लेकिन भगवान ने उनको भी रास में शामिल कर लिया। राधा रानी की आज्ञा से उनको भी रास में शामिल कर लिया। और भगवान जो है जितनी स्त्रियां हैं उतने भगवान ने रूप धारण किए, बहुत सुंदर। और रात कैसी बीत गई? चार मिनट, एक क्षण, चार मिनट के बराबर रात बीत गई है। इसके बाद फिर उन्होंने, कृष्ण की पत्नियों ने फिर कहा क्या कहा? कुछ उनको विशेष गौरव हुआ ना, ऐसा रास वृंदावन में नहीं हुआ होगा, ऐसा रास वृंदावन में नहीं हुआ होगा। क्यों? इसमें हम सब लोग भी हैं, हम सब लोग तो एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए एक्स्ट्रा। हाँ, ये रास जो है क्या है? एक्स्ट्रा, विशेष, वृंदावन में नहीं हुआ होगा, है ना। तो कृष्ण ने फिर क्या उत्तर दिया? अगर कृष्ण कहते कि नहीं, तो कहते आप जो है पक्ष लेते हो, उन्हीं का ही पक्ष लेते हो। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? ये बात तो आप तो राधा रानी से पूछना चाहिए, है ना। तो जब राधा रानी से पूछा तो कितनी कमियां बताई? गोवर्धन पर्वत नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ की जो है कुंज है, निकुंज है, छिपना है, हाथों से हाथ खींचना है, हाथों से हाथ को छुड़ाना है, और छिपना है, छिपे हुए को ढूंढना है, लताएं हैं, भ्रमर है, वो शीतल मंद सुगंध वायु है, और बंसी है की ध्वनि है, बंसी की ध्वनि, और मोर पंख का जो है श्रृंगार, पीतांबर है, कुछ भी नहीं है। हाँ, पक्षियों का अलग जो है संगीत, पक्षियों का अलग संगीत है, प्रेमपूर्ण संगीत है, हाँ, तो वो नहीं है। तुमने तो बहुत कमियाँ बताई, है ना। तो इस तरह से जो है जो कृष्ण की पत्नियाँ हैं उनका मान दूर हुआ, है ना। तो इस तरह से हमने सुना। अब आप लोगों की ओर से कोई और प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, ये गर्ग संहिता में ये कथा आती है। हाँ, गर्ग संहिता में ये कथा आती है, ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। हाँ, कृष्ण की आठ पत्नियों के नाम एक बार दोबारा बता दें। कौन बताएगा कृष्ण की आठ पत्नियों के नाम? हाँ जी, सत्यभामा, एक हो गई सत्यभामा, और दो रुक्मिणी, तीसरा कालिंदी, जामवती चौथी, लक्ष्मणा पांचवी, मित्र वृंदा छठवी, नाग नजीती सातवीं, भद्रा आठवीं। ठीक है, आठ पत्नियां। धन्यवाद। श्रीमती राधारानी कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। बैठिए बैठिए बैठिए।
हरे कृष्णा, हरे। हम वास्तव में हम सभी बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी के पहले विभक्त महापूर्ति का मुखारविंद से अद्भुत कथा, जो कि वास्तव में बड़ी दिव्य थी। यदि आप लोग उपस्थित रहे होंगे तो याद होगा कितने लोग थे प्रभु जी पिछली बार आए थे। जन्माष्टमी से पहले हाथ खड़ा करें, जब हम सब काफ़ी लोग नहीं थे। प्रभु जी ने बड़ी ही दिव्य कथा, वो अद्भुत कथा, बड़ी रहस्यमय कथा थी जो प्रभु जी ने जन्माष्टमी के पूर्व मेला में हमें सुनाई थी। और आज भी कितना सौभाग्य यश तादाद में आने वाली है, और कितनी अद्भुत कथा जो हम खुद आपके हृदय में उजागर हो रहा होगा कि कभी सुना नहीं होगा ये कथा आपने। कितनी बड़े बड़े रहस्य खुले, कितने बड़े बड़े रहस्यों का उजागर किया प्रभु जी ने अपने मुखारविंद से, और बड़े ही अद्भुत, जो कि निश्चित रूप से प्रभु जी बड़े निपुण हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ से स्टाफों को प्रॉब्लम सॉल्व करके लाते हैं, हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, घर से काम नहीं है। जी के पास सब भंडार वाला पड़ा है और जी के यही क्या नई थी श्रोता को एक नई चीज, हर चीज तो मतलब यहाँ तो कथा होती ही रहती है, नई चीज कि कोई अलग चीज में श्रोताओं को सुना। और प्रभु जी इसमें बड़ा निपुण है और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी का इतने सुंदर मुखाकृत से अपनी दिव्य कथा को संशोधन कराया, तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से प्रभु जी का हम हार्दिक धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे
जय।